विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। शिक्षार्थियों, यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का निबंध है, एक महत्वपूर्ण विचार को हमारे सामने रखता है। इसमें प्रभाकर जी ने एक ऐसे द्वंद्व को प्रस्तुत किया है जिसे आप समझें कि आम जीवन में भी उस तरह का द्वंद्व हमारे जीवन में भी पैदा होता है। इसमें लेखक एक रमणीक पहाड़ी स्थल पर जाते हैं और वहां पर एक मकान में ठहरते हैं और वहां खिड़की से एक बांज के पेड़ को बड़े ध्यान से देखते हैं और उसके बाद उनके मन में विचारों का एक सिलसिला चलता है और वे विचार एक एक कर प्रश्नों के रूप में सामने आते हैं और रचनाकार उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी ही रोचक विधा है प्रश्नोत्तर शैली की। बांज के पेड़ को देखकर लेखक को ये लगता है कि कोई दोस्त सामने आकर खड़ा होकर हाल पूछ रहा है और वह उसमें निमग्न हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उन्हें एक ठूंठ पेड़, ठूंठ का मतलब होता है कंकाल पेड़ जिसमें एक भी पत्ते नहीं होते हैं, वह भी दिखाई देता है रचनाकार को। और उसमें उसमें चूंकि पत्ते नहीं है इसलिए वह झूम नहीं रहा है, वह जैसा का तैसा खड़ा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये जो दोनों चित्र हैं, ये दोनों चित्र किसी न किसी विषय की ओर संकेत करते हैं। यहाँ शिक्षार्थियों, इस निबंध का मुख्य विषय वस्तु यह है कि हमें जीवन में समन्वयवादी दृष्टि अपनानी चाहिए, अर्थात लेखक ने यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई है। वह इस प्रसंग के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में कहीं तो झुकना पड़ता है और कहीं पर डटना पड़ता है। जीवन में स्थिरता होनी चाहिए, इसके लिए वे अलग अलग संदर्भ देते हैं। वे यह बताते हैं कि जो व्यक्ति निर्जीव समान है अर्थात जिद्दी है, वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। अर्थात उन्होंने उदाहरण भी दिया है रावण का कि वह जिद्दी था, वह ज्ञानी था लेकिन जिद्दी था, इसीलिए वह जीवन में सफल नहीं हो सका। तो उन्होंने दूसरा विकल्प दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, हमें जीवन में व्यवहारिक होना चाहिए, हमें अपनी बात दूसरों से कहनी चाहिए और दूसरों की बात को सुनना भी चाहिए, तभी हमारा जीवन सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। उन्होंने अनेक उदाहरणों के माध्यम से इस बात को प्रस्तुत किया है। इसमें आप देखेंगे कि हिलने, झुकने, सामंजस्य करने, ये सारी क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, उन्होंने लिखा है कि जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है, देह है नाशशील और आत्मा है शाश्वत। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है और देह को निरंतर हिलना झुकना ही है, नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है, न हिलता है न झुकता है। इस उदाहरण के बाद वो संदेश देते हैं कि हमारे विचार लचीले हो, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चलें और हमारे आदर्श स्थिर हों, हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो और स्वयं मुड़कर हमें उठने, बैठने, लेटने में मदद देने की भी। अब आप देखें कि कितना बहुमूल्य संदेश वे देते हैं। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जीवन वही सार्थक है जो दृढ़ भी हो और समय पर अड़ियल भी हो। दृढ़ का अर्थ यह है कि वह सत्य के मार्ग पर चले, और उसके अलावा यह भी बताना चाहते हैं कि हमें समुचित स्थान पर विवेकपूर्ण निर्णय भी लेना चाहिए, हमें जड़ नहीं बनना चाहिए। अब आप देखें कि इसके लिए वे उन्होंने दो वृक्षों का उदाहरण दिया, तो आप कल्पना करें कि आप अपना जीवन फूट की तरह जीना चाहेंगे या हरियाली से भरे हुए वृक्ष के समान, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि सामान्य जीवन में दो तरह की अतिशयता दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता, वो कठपुतली की तरह होते हैं, वे दूसरों के इशारे पर नाचते रहते हैं। तो यहाँ रचनाकार उन लोगों की भी आलोचना करते हैं कि जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई अपना वजूद नहीं है। इसीलिए वे कहते हैं कि हमें समय समय पर दृढ़ भी होना चाहिए। दृढ़ता का मतलब है अपने आदर्शों पर चलना। शिक्षार्थियों, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से बहुत से आदर्श वाक्य सुने होंगे, बहुत से संस्कार आपने सीखे होंगे। वे सभी संस्कार जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। यहाँ रचनाकार यह कहते हैं कि हमारा जीवन आदर्शों पर आधारित हो, कुछ सिद्धांतों पर आधारित हो, कुछ जीवन में मान्यताएं होनी चाहिए और हमें उन पर कायम भी रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसीलिए वे अलग अलग उदाहरणों को हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है शिक्षार्थियों, कि उपसंहार में वे कुछ निष्कर्ष देते हैं। वे कहते हैं कि जीवित व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों को समझे और उसके अनुसार अपने को ढाले। कहा भी गया है, जैसी चले बयार पीठी तब तैसी दीजे, अर्थात जहां जितना झुकना चाहिए वहां उतना झुको, जहां अपने आदर्शों पर दृढ़ रहना चाहिए वहां दृढ़ रहो। इस प्रकार उन्होंने यह बताया है कि यह जीवन की दृढ़ता ही हमारी पहचान बनाती है और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सिद्धांतों पर दृढ़ रहने की शिक्षा देती है, सत्य और आदर्शों पर चलने का मार्ग दिखाती है। इसमें हम थोड़ी बात भाषा शैली पर भी करें जी। तो यहाँ शिक्षार्थियों, जो प्रभाकर जी की भाषा है वह सहज और सरल है। एक बार आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका मन रम जाता है और आप पूरी जो पूरा निबंध है उसे पढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने प्रश्नोत्तर शैली में चूंकि इसे प्रस्तुत किया है, इसलिए रोचकता बनी हुई है इसमें। और रावण, हिरण, कश्यप, ये बहुत सारे जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं उसे भी शैली में रोचकता आई है। यहाँ ललित निबंध की जो विशेषता होती है लालित्य, वह भी दिखाई देता है। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे पलंग पर लेटे लेटे वह यूं दिखता है जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो। यहाँ वृक्ष से बात कर रहे हैं वो, तो इस तरह की भाषा की छटा आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और उन्होंने कई नए शब्दों का भी सृजन किया है, जैसे आप देखेंगे डिक्टेटरी, अधिनायकता, इस तरह का शब्द आपको सामान्य बोलचाल में नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने लोकोक्तियों का सहजता से प्रयोग किया है और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है जो आपको बांध कर रखती है। उन्होंने स्टालिन, हिटलर आदि बहुत से संदर्भों को भी यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यह निबंध जीवन में या शिक्षा जीवन के लिए यह शिक्षा देता है कि परिस्थितियों से हमें एक सीमा तक समझौता करना चाहिए और एक पेड़ की जड़ के समान हमें आदर्शों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए, हमें समन्वयवादी होना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में विवेक से काम लेना चाहिए और सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न रूपों में यहाँ रचनाकार ने अपनी बात को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है।
जी
और जो हमने बताया था कि गद्य के माध्यम से विचारों की सृष्टि की जाती है, उसका रूप आपने यहाँ पे देखा। और शीर्षक जैसा कि आप देखते हैं, एक था पेड़ और एक था ठूंठ, कहने का तात्पर्य यही है कि एक पेड़ हरा भरा होता है, दूसरा ठूंठ के समान होता है,
जी
लेकिन दोनों जीवन के दो पक्षों को बताते हैं और उनका समन्वय होना बहुत जरूरी है। और इसी सिद्धांत को उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है। अगर आप इस निबंध के मुख्य बातों को समझ लेते हैं तो आप प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा से
जी
आप लोगों ने लाभ उठाया होगा। धन्यवाद।